नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मिले जुले वैश्विक रुझानों के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजारों में गिरावट हुई और सेंसेक्स करीब 420 अंक टूट गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएससी सूचकांक 419.69 अंक गिरकर 59,226.46 पर आ गया। व्यापक एनएसई निफ्टी 140.6 अंक गिरकर 17,617.85 पर था। सेंसेक्स में कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इंडसइंड बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड और आईटीसी में बढ़त हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सोल और टोक्यो के बाजार लाल निशान में थे, जबकि शंघाई और हांगकांग में बढ़त देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को निचले स्तर पर बंद हुए थे। सेंसेक्स शुक्रवार को 651.85 अंक की गिरावट के साथ 59,646.15 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 198.05 अंक गिरकर 17,758.45 पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.01% की गिरावट के साथ 95.74 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। कोलकाता बंदरगाह ने नेताजी सुभाष गोदी के कुछ हिस्सों को आधुनिकीकरण और परिचालन के लिए निजी संस्थाओं को देने की योजना बनाई है। कोलकाता बंदरगाह को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एसएमपी कोलकाता के चेयरमैन विनीत कुमार ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि ये पहल मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि एनएसडी बर्थ के लिए मौजूदा परिचालन और रखरखाव समझौते वर्ष 2024 में समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हम पहले चरण और बाहरी टर्मिनल में एक साथ 4 बर्थ लेने का इरादा रखते हैं, जबकि दूसरे चरण में दूसरी एवं तीसरी बर्थ को लिया जाएगा। इसके साथ ही कोलकाता डाक प्रणाली के तहत आने वाले एनएसडी का पूरा संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर किया जाएगा। कोलकाता डाक सिस्टम में नेताजी सुभाष डाक और किडरपुर डाक शामिल हैं। दवा कंपनी माइक्रोलैब्स ने बुखार और शरीर के दर्द की रोकथाम में इस्तेमाल होने वाली अपनी दवा डोलो 650 को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सकों को 1,000 करोड़ रुपए के उपहार देने संबंधी आरोपों को निराधार बताया है। एक गैर सरकारी संगठन ने 18 अगस्त को उच्चतम न्यायालय को बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बेंगलुरु की दवा कंपनी पर चिकित्सकों को 1,000 करोड़ रुपए के उपहार देने के आरोप लगाए हैं, जिससे कि वो मरीजों को परामर्श में ये दवा लिखें। माइक्रोलैब्स के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आई कुछ खबरों में ऐसा निराधार आरोप लगाया गया है कि डोलो 650 को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने एक साल में 1,000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है और इससे माइक्रोलैब्स दवा उद्योग और चिकित्सकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है। डोलो 650 की सालाना बिक्री 360 करोड़ रुपए रही है, जो कंपनी की कुल बिक्री का करीब 8% है। प्रवक्ता ने कहा कि डोलो 650 जैसे किफायती विकल्प के साथ देश भर के चिकित्सक महामारी में महंगी एंटीवायरल और अन्य दवाओं का सहारा लिए बिना अपने अधिकांश रोगियों को ठीक कर पाए। प्रवक्ता ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहारों का वितरण करने की बात ही बेतुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित संवाद मंच जियो हैप्टिक को वर्ष 2026 तक राजस्व 10 गुना बढ़कर 10 करोड़ डॉलर हो जाने की उम्मीद है। हैप्टिक के सह संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकृत वैश ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि ई कॉमर्स नए जमाने की कंपनियों और छोटे तथा मझोले व्यवसायों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने से उनकी कंपनी को मुख्य रूप से बल मिलेगा। वैश ने कहा, इस मंगलवार को हमारे 9 साल पूरे हो जाएंगे। पहले साल में हमने 4 लाख अमेरिकी डॉलर की आय हासिल की थी। दूसरे वर्ष में ये आय बढ़कर 10 लाख डॉलर हो गई। इस साल हम 1 करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर हैं। उन्होंने कहा, हमें 2025 तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को हासिल करने की उम्मीद है। वर्ष 2026 तक तो 10 करोड़ डॉलर का राजस्व हासिल कर ही लेंगे। वैश्य ने कहा कि कंपनी स्थायी तरीके से बढ़ते कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और अगर वो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर निवेश बंद करते ही वो मुनाफे में आ जाएगी। जियो हैप्टिक को ई कॉमर्स खंड, फिनटेक जैसे नए जमाने की कंपनियों और अन्य स्टार्टअप में कारोबार से तेजी की उम्मीद है। पेटीएम ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरधारकों ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विजय शेखर शर्मा को फिर से नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को संपन्न सालाना आम सभा की बैठक में 99.67% शेयरधारक शर्मा की फिर से इस पद पर नियुक्ति के पक्ष में थे और सिर्फ 0.33% शेयरधारकों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। हालांकि निवेशक सलाहकार फर्म IIAS ने इस पद पर शर्मा की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ अनुशंसा की थी। IIAS ने कहा था कि शर्मा ने कंपनी को लाभदायक बनाने के लिए अतीत में कई वादे किए थे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। शेयरधारकों ने शर्मा के साथ ही पेटीएम के अध्यक्ष और समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी मधुर देवड़ा के वेतन पैकेज को भी मंजूरी दी। लगभग 94.48% शेयरधारकों ने शर्मा के पारिश्रमिक के पक्ष में मतदान किया और 5.52% ने इसका विरोध किया। देवड़ा के पारिश्रमिक को मंजूरी देने के प्रस्ताव के मामले में भी ऐसा ही समर्थन देखने को मिला। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।